ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. انسان سب کوئی انسان کی طبقے سے بھی اس کا تعلق ہو اور کسی دور کا وہ رہنے والا ہو یا کسی علاقے میں وہ آباد ہو, اس کی یہ کوشش ہوتی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے, اور کامیاب وہی انسان ہو سکتا ہے جو صحیح معنی میں انسان. صحیح معنی میں انسان بننے کے لیے ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ ایسے حضرات کے پاس اور ایسے افراد کے پاس آدمی زندگی گزارے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کے شرف سے سرفراز فرمایا ہے. اور یہ اس کا ان حضرات کے پاس زندگی گزارنا خلوص کے ساتھ ہو اور طلب اور فکر مندی کے ساتھ ہو. اگر خلوص نہیں ہے تب بھی ساتھ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور اگر ہوش مندی اور فکر مندی نہیں ہے, غفلت کا شکار ہے, تب بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا اور صحیح انسان بننے کی نوبت نہیں آتی. آپ اس پر غور فرمائیں کہ ایک طالب علم میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتا ہے, 5 سال وہ اپنے اس تعلیم کو حاصل کرنے میں خرچ کرتا ہے, اور زمانے طالب علمی میں اس کو باقاعدہ اسپتال کے اندر ڈاکٹروں کی نگرانی میں مریضوں کو دیکھنے پر مامور کیا جاتا ہے, اور اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے. شروع کے 1-2 سال ایسے گزرتے ہوں گے کہ جس میں اس کی یہ ڈیوٹی نہ ہو, مگر آخر کے 2-3 سال ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ وہ ہسپتال میں جائے گا اور وہاں مریضوں کو دیکھے گا, اور بڑے ڈاکٹروں کی نگرانی میں یہ عمل کا ہوگا. 5 سال کی تعلیم مکمل ہو جانے کے بعد پھر مستقل طور پر اس کو 1 سال مزید ڈیوٹیاں ہسپتال کے اندر دینی پڑتی ہیں, اور تب کہیں جا کر وہ قابل اعتماد ڈاکٹر قرار پاتا ہے. यही हाल उन लोगों का है जो वकालत की तालीम हासिल करते हैं। वकालत की डिग्री हासिल करने के बाद फिर किसी बड़े और मारूफ वकील के साथ रहकर उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है और अदालतों के अंदर जाना होता है, और खाली पढ़ लेना और कोर्स मुकम्मल कर लेना ये काफी नहीं है। इससे ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि कई लोग ऐसे हैं जो तिजारत पेशा हैं, उनके पास बाकायदा कारखाने हैं और मिल हैं, उन कारखानों में और मिलों में सैकड़ों मजदूर उनके यहाँ नौकरियां करते हैं और मुलाजमत करते हैं, लेकिन वो अपने बच्चे को तिजारत सिखाने के लिए बाकायदा किसी दुकान के ऊपर मुलाजिम रखवाते हैं, और वो मामूली नौकरों की तरह उस दुकान के ऊपर नौकरी करता है, एक साल करता है, दो साल करता है, तीन साल करता है, तब जाकर उसको तिजारत के अंदर तजर्बा हासिल होता है। तो जिस कोई फन ऐसा नहीं है कि उस फन को कमाल के साथ हासिल करने के लिए और बेहतरीन तरीके पर उसमें महारत पैदा करने के लिए कामिल फन लोगों की सोहबत इख्तियार न की जाती हो, कोई फन ऐसा नहीं। किताबों में टिप के नुस्खे लिखे हुए, लेकिन जाहिर है कोई किताबों से उन नुस्खों को देखकर तबीब नहीं बन सकता। इसी तरीके से डॉक्टरी के नुस्खे लिखे हुए हैं, बहुत सी किताबें छपी हुई हैं और होम्योपैथिक के भी, एलोपैथिक के भी, लेकिन उन किताबों को देखकर न कोई एलोपैथिक डॉक्टर बन सकता है और न होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकता है। तो इसी तरीके से आप ये समझ लीजिए कि ये जो इंसान बनने वाली बात है, इसके लिए कुरान पढ़ा जाता है, इसके लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी जाती है। तो इन किताबों के पढ़ने से खाली आदमी के लिए इंसान बनना मुमकिन नहीं है, जब तक कि वो अल्लाह वालों के साथ अपने रबते को सही न करे और उनके साथ अपना ताल्लुक उस्तवार न करे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनू मास्सादिक़ीन, हुक्म दिया जा रहा है तक़वा इख्तियार कर। मुत्तकी आदमी की अल्लाह की यह बड़ी इज्जत है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम्हारे यहाँ तुम में से अल्लाह की यहाँ इज्जत वाला वो आदमी होता है जो ज्यादा तक़वा वाला और मुत्तकी होता है। तो अब आप देख लीजिए तक़वा हासिल करने का तरीका क्या है। ये नहीं है कि किताबें पढ़ने से तक़वा हासिल हो जाएगा और कुरान मजीद हिफ्ज करने से तक़वा हासिल हो जाएगा और मुफ्ती बनने से तक़वा हासिल हो जाएगा और मुदर्रिस बनने से तक़वा हासिल हो जाएगा। नहीं, न किताबों से, न वादों से, नजर से पैदा दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुआसा कुरैश ने ये कहा कि आपके पास ये सोसाइटी के गिरे पड़े लोग जिनका कोई मकाम नहीं, कोई मर्तबा नहीं, ये आकर बैठते हैं, इनकी मौजूदगी में हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है, आप इनको अपनी मजलिस से उठा दीजिए तो उसके बाद फिर हम आपके पास बैठेंगे और आपकी बातें सुनेंगे। कुरान मजीद ने फरमाया कि उनकी इस बात को रद्द कर दिया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, वस्बिर नफ्सक मा अल्लज़ीना यद्उून रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी युरीदून वजह वला तअ्तु अयनाका अनहुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुति मन अग़फ़लना क़ल्बुहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु वकाना अम्रुहु फुरुक़ा। इनका ये बात, ये एक अमर महूम है, ये तो दुनियावी ख्वाहिशात के पैरोकार हैं और इनका तो रवैया हद से गुजरा हुआ है। तो जिन लोगों का रवैया हद से गुजरा हुआ है और जो दुनियावी मफादात और दुनियावी ख्वाहिशात के ताबे हैं, उनका आपके पास बैठकर ईमान ले आना ये अम्र मौकूफ है। और ये लोग जो गरीब और मिस्कीन आपके पास आते हैं ये मुखलिस यदून बिलगदा के वशी, ये सुबह और शाम अल्लाह को याद करते हैं, युरीदून वजह और अल्लाह की रजा के तालिब हैं। इनको आप अपने पास बैठने का मौका अता कीजिए, इनका मुस्तफीद होना वो हमारे यकीनी है और इन रुसा कुरैश का मुस्तफीद होना ये हमारे मौहूम है। वलाका तो आना कान हूँ, आपकी निगाहें इनसे न हटें और इन्हीं के ऊपर आपकी निगाह मजबूत रहनी चाहिए। तुरीद ज़ीनत अल हयात दुनिया, आप ये चाहते हैं कि साहब ये बड़े बड़े लोग हैं, ये अगर ईमान ले आएंगे तो अहले इस्लाम को दुनियावी सहूलतें हासिल होंगी और लोगों की दीन की तरफ रग़बत बढ़ेगी। तो उस सिलसिले में बतलाया जा रहा है कि दुनिया और मताए दुनिया ये तो सब फानी चीज़ें हैं, ये तो ढलते हुए साय की तरह से है, ये बातें करने वाली चीजें नहीं है, इनके ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता। असल चीज तो वही तकवा है और असल चीज वही इखलास है, तो उसको पेश नजर रखिए और ये ख्याल न कीजिए कि ये बड़े लोग हैं ये ईमान ले आएंगे और ये ईमान ले आएंगे तो हमारे पास दावत तबलीग के सिलसिले में सहूलतें पैदा हो जाएंगी। ये आपका ख्याल है, ये ईमान लाने वाले लोग हैं। अब तवल्लामा वो मायुद्री का लाल लहू ये जक्का की जो सूरत है उसके अंदर भी वही अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम और रुआसा कुरैश के किस्से में फरमाया गया है कि इनका आप ख्याल न कीजिए, ये जो आपके सहाबी हैं अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम इनको तरजीह दीजिए। तो बात असल में यही है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी के लिए भी ये जरूरी था कि आदमी इखलास के साथ हाजिर हो, आदमी तलब लेकर हाजिर हो, आदमी इस्तेफादे की नीयत से हाजिर हो। तो जैसे वहां ये जरूरी था इसी तरीके से दूसरी जगह भी ये जरूरी है और इसके बगैर काम चलता नहीं। मेरे दोस्तों, हमने बहुत देखा, बहुत लोग इल्म के अंदर कमाल पैदा करने की कोशिश करते हैं और उनको बहुत कुछ हासिल भी हो जाता है, इल्मी लाइन में उनका मकाम वो मोतबर करार दे दिया जाता है और उनकी इल्मी सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश किया जाता है, लेकिन खल्क़े खुदा को उनसे कोई फायदा नहीं पहुंचा। और खल्क़े खुदा को उनसे फायदा न पहुंचने की वजह यही है कि वो शेख शुदी जाहिद शुदी और दानिशमंद ये जुमला शुदी वाले इंसान शुदी, वो सारी चीजें होती हैं लेकिन उनकी मुआशरत सही नहीं होती, उनके मामलात दुरुस्त नहीं होते और वो तकवा की नेमत से और तवक्कुल की नेमत से महरूम होते हैं। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि ऐसी इल्मी तरक्की से क्या फायदा जब आदमी तकवा ही से महरूम हो, और जब आदमी अल्लाह तबारक व तआला की रजा का ही तालिब न हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है, अल्लाहुम्मा जाल हुब्बका अहब्ब इलैया मिन नफ्सी वमिन अहली वमिन अल माइल बारी, اے اللہ آپ اپنے مجھے اپنی محبت مجھے ایسی عطا فرمائیے کہ ایسی محبت مجھے اپنی ذات کے ساتھ بھی نہ ہو اور ایسی محبت مجھے اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھی نہ ہو اور ایسی محبت مجھے ٹھنڈے پانی کے ساتھ بھی نہ ہو. ٹھنڈے پانی کی وہاں بڑی اہمیت, یہاں ہر جگہ اہمیت, لیکن وہاں پانی کی قلت تھی اس لیے اس کو اور زیادہ اہم قرار دیا جاتا تھا. تو اللہ کی محبت کی طلب پیغمبر اس طرح کرو, اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی فی حبک, اے اللہ مجھے ان لوگوں کی محبت عطا فرما, اللہم ارزقنی حبک اپنی محبت عطا فرما اور وحب من ینفعنی فی حبک اور ان لوگوں کی محبت عطا فرما کہ جن کی محبت آپ کی محبت کا ذریعہ بن جائے اور آپ کی محبت کا سبب بن جائے. تو اس لیے اللہ کی محبت کی طلب ہونی چاہیے, تقویٰ ہونا چاہیے, توکل ہونا چاہیے, اور یہ کب ہوگا؟ یہ جب ہی ہوگا جبکہ اہل اللہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اور ہوش مندی کے ساتھ اپنے ربط اور تعلق کو قائم کیا جائے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ والوں سے ان کی وابستگی دنیاوی مفادات کے لیے ہوتی ہے اور اخلاص پر مبنی نہیں ہوتی, وہ مستفید نہیں ہوتی. اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو خلوص کے ساتھ اور ہوش مندی کے ساتھ اللہ والوں سے تعلق پیدا کرتے ہیں, وہ ماشاءاللہ اپنی استعداد کے مطابق اور اپنی صلاحیت کے مطابق مستفید ہوتے ہیں. ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے. حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی, اس طرح نماز پڑھا کرو جس طرح کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. آج آپ دیکھیے کہ شاد و نادر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جن کی نمازیں صحیح ہیں. کسی کو یہ نہیں معلوم کہ جناب نماز کی نیت باندھنے کے لیے ہاتھ کس طرح اٹھائے جاتے ہیں, کسی کو یہ نہیں معلوم کہ ہاتھ باندھنے کا جب قیام کی حالت میں ہاتھ باندھتے ہیں تو طریقہ کیا ہوتا ہے, کسی کو یہ نہیں معلوم کہ جب رکوع میں جاتے ہیں تو اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے, سجدے میں جاتے ہیں تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اسی طریقے سے نماز کے جو اذکار ہیں اور نماز ٹھیک ہے فرض ادا ہو جاتا ہے, واجب ادا ہو جاتا ہے, لیکن نماز کے مستحبات اور نماز کے آداب کی رعایت کرنے والا شاد و نادر کوئی کوئی آپ کو ملے گا, ورنہ تو عموماً وہ آداب صلات اور مستحبات صلات کی رعایت نہیں ہوتی. تو اس کی وجہ وہی طلب نہیں اور جستجو نہیں ہے اور کوشش نہیں ہے. یہاں علماء موجود ہیں, ان علماء میں یہ طلبہ رہتے ہیں اور یہ فقہ بھی پڑھتے ہیں, حدیث بھی پڑھتے ہیں, لیکن یہ کہ ان کے اندر اس بات کی طلب چونکہ نہیں ہے اس واسطے نمازیں ان کی نامکمل, آداب سے محروم ہیں اور مستحبات سے محروم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی, تو یہاں بھی ہونا چاہیے کہ بھائی جو لوگ نماز کو اس کے آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور اس کے مستحبات کی پوری پوری رعایت کرتے ہیں ان کی نماز کو دیکھو اور ان سے سبق حاصل کرو, اور کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو ان سے دریافت کرو. لیکن یہ تو جب ہی ہوگا نا جب کہ آدمی کے اندر طلب ہوگی, اور اگر طلب نہیں ہوگی تو کیا اس کو فائدہ ہوگا. تو بہرحال اب یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے اندر انسانیت کی صفت پیدا کرنے کے لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے. اب ایک آدمی مولوی ہو جاتا ہے, کئی بات کہتا ہے, لوگ اس کے ہاتھ چومتے ہیں, اس سے مصافحہ کرتے ہیں, کہیں امام ہوتا ہے لوگ اس سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں, یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں. लोगों के मुसाफिर करने की वजह से और लोगों के इधारे अकीदत करने की वजह से ये समझने लगता है कि मैं बहुत कुछ हो। ख्वाजा पिंदारत के दारत हासिल है ख्वाजा वजीद पिंदार में, वो ये समझता है कि मैं बड़ा आदमी हो गया, हालांकि वो अपने अपने ख्याल में बड़ा हो गया, वरना उसके अंदर नफाइज तो भरे पड़े। तो ये इसीलिए है कि तलब नहीं है और सही और कोशिश नहीं है। अगर आदमी सही बात लोग होते फितरतन वो सलामत मिजाज के हामिल होते हैं और उनके अंदर इस्तेदाद और सलाहियत वह होती है, वो मुस्तस्ना है, उनके अंदर उस फितरी सलाहियत और इस्तेदाद की वजह से बहुत जल्द वह हालात बेहतर और उम्दा पैदा हो जाते हैं। हजरत मौलाना शेखुल हदीस ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हम नौजवान लड़के थे और वह पढ़ने के बाद पढ़ाने भी लगे थे, तो आपस में जैसे कि नौजवान लड़कों में बेतकल्लुफी होती है तो इस तरह की हमारी बेतकल्लुफी भी थी। मौलाना अब्दुलरहमान कैमलपुरी रहमतुल्लाह अलैह मुफ्ती अहमदुर्रहमान मरहूम के वालिद फरमाते हैं कि वो भी हमारे साथ से खूब खेलते थे और खूब वह हमारी और साथियों की बेतकल्लुफी होती थी, लेकिन यकायक उनका रुजू हो गया मौलाना शफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ। और जब मौलाना शफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ उनका रुजू हो गया तो वो ऐसे बदले कि मालूम ही नहीं होता था कि वही अब्दुलरहमान है जो हमारे साथ कबड्डी खेला करता था या ये कि कोई दूसरा। इतनी तब्दीलियां और हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की वो मुकातबत और मौलाना अब्दुलरहमान की छपी हुई मौजूद है, उसमें हजरत ने कुछ अरसे के बाद उनको अपनी खिलाफत अता फरमाई तो हजरत मौलाना ने अर्ज किया कि हजरत मैं तो बैत भी नहीं हुआ और आपने खिलाफत की जिम्मेदारी सुपुर्द फरमा दी है, तो हजरत ने फरमाया आप बैत हो जाओ। तो बाद लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके अंदर फितरी सलाहियत होती है और वो बहुत जल्द अख्द कर लेते हैं और उनकी इसलाह मुकम्मल हो जाती है, और बहुत लोग ऐसे पूर्णमग्ध होते हैं कि उनकी इसलाह की आप जितनी चाहें लेकिन ये तो वो उसी तरह नामुकम्मल के नामुकम्मल रहते हैं, और वजह उसकी क्या तो उनमें तलब नहीं होती। वजह उसकी ये है कि उनके अंदर फिक्रमंदी नहीं होती और वो हर चीज को सरसरी टालने और सरसरी तौर पर गुजारने की कोशिश करते हैं, तो उसका नतीजा ये होता है कि इस्लाह से महरूम होते हैं। तो अहलुल्लाह से ताल्लुक होना चाहिए और अहलुल्लाह के ताल्लुक के जरिए से ही इंसानियत आदमी के अंदर आएगी, और इंसानियत आ जाएगी तो फिर खल्क खुदा के लिए मुफीद हो। आज इतने मौलवी पैदा हो रहे हैं, इतने मौलवी पैदा हो रहे हैं कि जिधर देखो मौलवी हर मदरसा दौरे हदीस के तलबा से भरा हुआ है। हर मदरसा जिसमें एक मदरसे में आज दौरे हदीस के तालिबिन मौजूद हैं, चंद साल पहले 20-25-30 साल पहले पूरे पाकिस्तान के अंदर दौरे हदीस के इतने तालिबिन नहीं होते, पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं होते, और अब एक मदरसे के अंदर उसमें मौजूद, उससे ज्यादा मौजूद, दूसरे में मौजूद, उससे ज्यादा मौजूद, तीसरे में मौजूद, उससे ज्यादा मौजूद। अल्हम्दुलिल्लाह इशाअत इल्म दीन का सिलसिला बहुत बड़े पैमाने पर जारी है और यकीनन ये काबिले हजार शुक्र है। अल्लाह तबारक व तआला का हम इस पर जितना शुक्र करें वो कम है। लेकिन मेरे दोस्तों, इन फारिग होने वाले उलमा और खुदला के अंदर अगर वो सिफात पैदा हो जाए जिन सिफात को के मतलूब करार दिया गया है और जिन सिफात के लिए इन मदारिस का क़याम अमल में आया है, तो आप यकीन कीजिए कि अजीम इनकलाब अल्लाह तबारक व तआला रहनुमा फरमा, अजीम इनकलाब। लेकिन ये कि बाहर लोग हैं, अपनी जगह पर काम भी कर रहे हैं, उनके काम का और उनके काम की इफादियत का इनकार हरगिज मकसूद नहीं है। वो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये सूरत हाल वाजिब हजार शुक्र है कि अल्लाह ने इशात इल्म-ए-दीन की ये सूरतें अदा फरमा दी हैं। लेकिन ये कि इस पर कनाअत करके बैठ जाना और इससे आगे आला सिफात और आला दर्जात के लिए सही और कोशिश न करना, ये अलमिया, ये अलमिया, इसके ऊपर तनाज कर ली गई। किताब हमारी समझ में आ गई, हम उसकी तदरीस के काबिल हो गए, इम्तिहान में हमारे आला और अच्छे नंबर आ गए और हम अगली क्लास के अंदर तरक्की करके पहुंच गए, इसको मकसूद करार दे लिया जाए। इतनी बात को मकसूद करार दे लेना ये नाकाफी है, इतनी बात को मकसूद करार दे लेना ये हमारे हदफ के खिलाफ है और ये हमारे मकासद के खिलाफ है। हमारे इन तमाम दीनी इदारों की बात न कर रहा हूँ, तमाम दीनी इदारों का मकसद तो है रिजालुल्लाह पैदा करो, रिजालुद्दीन पैदा करो। और रिजालुल्लाह वो होते हैं कि जिनके अंदर तकवा भी होता है, जिनके अंदर तवक्कुल अल्लाह भी होता है, जिनके अंदर इनाबत अल्लाह भी होती है, जिनकी माशरती जिंदगी भी बेहतरीन होती है, जिनके मामलात भी शरीयत के मुताबिक होते हैं, वो रिजालुल्लाह में दाखिल होते हैं। हमने आपसे अर्ज किया था, फिर अर्ज कर देते हैं कि अगर किसी आदमी को इत्तेबा शरीयत की और इत्तेबा सुन्नत की तौफीक हासिल हो जाए, तलबा जानते हैं इत्तेबा शरीयत का मफहूम क्या है और इत्तेबा सुन्नत का मफहूम क्या है, ये मामलात को भी शामिल है, ये इबादात को भी शामिल है, ये अखलाक और माशरत को भी शामिल है और ये अकायद और ईमान को भी शामिल है, ये इत्तेबा सुन्नत की और ये इत्तेबा शरीयत की अगर किसी को नसीब हो जाए और साथ साथ दवा में जिक्र की तौफीक उसको मिल जाए, वो वलीउल्लाह, उसको निस्बत बातनिया हासिल है और वो बिला शुबा अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बंदों के अंदर दाखिल होगा। और ये बात ऐसे माहौल जैसे माहौल में हम रहते हैं हासिल कर लेना कोई मुश्किल बात नहीं, लेकिन वही बात है कि तलब भी होनी चाहिए और फिक्र भी होनी चाहिए और अहलुल्लाह से ताल्लुक भी होना चाहिए। अहलुल्लाह का ताल्लुक बड़ा अजीब तासीर होता है। हमारा अपना जाती तजर्बा यह है कि अगर किसी परेशानी के अंदर रूहानी किसी मामले में अगर कोई परेशानी पैदा हो या कोई कब्ज की सूरत पैदा हो और शर्त के साथ की तरफ रुजू किया जाए महज खत लिखकर, तो उस खत लिखने से ही उसमें आसानी पैदा हो जाती है और शर्त की तवज्जो खत का जवाब लिखने के बाद जब हमारी तरफ होती है तो हमारी वो मुश्किल बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है। तो ये अहलुल्लाह के साथ ताल्लुक के समरात होते हैं और अहलुल्लाह के साथ ताल्लुक के नताइज होते हैं। लेकिन ये वही है कि इखलास भी होना चाहिए और अब्दियत भी होनी चाहिए और खशियत खुदावंदी और मोहब्बत इलाही भी होनी चाहिए। ये सिफात अगर हमारे अंदर आ जाए और हम इसके लिए कोशिश करें तो ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा इनाम होगा। और हम अर्ज कर रहे हैं कि हमारे ये तलबा जो फारिग़ुत तहसील होकर जाते हैं, ये अगर ان صفات کے ساتھ موصوف ہوں تو ایک عظیم انقلاب و رونما ہو سکتا ہے. اور یہ یہاں کوئی 10 سال رہتا ہے, کوئی 12 سال رہتا ہے, کوئی اس سے کم رہتا ہے, کوئی اس سے زیادہ بھی رہتا ہے. یہ اگر اس زمانے میں کوشش کریں تو ان کے کامیاب نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں, یہ یقیناً کامیاب ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو با علم نافع بھی عطا فرمائے گا اور علم منتفع بھی عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے بھائی,
www.ahnaf.com علماء کرام کی تقاریر, مناظرے, حمد و نعت اور اسلامک آڈیو کا بہترین کلیکشن ahnaf.com.